आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, मैं हूं स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। मेलबर्न के 44 सार्वजनिक आवास यानी पब्लिक हाउसिंग टावरों को ध्वस्त करने की विक्टोरियन सरकार की योजना को एक और कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि योजना में बहुत सी खामियां हैं। इनर मेलबर्न कम्युनिटी लीगल सेंटर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील शुरू कर रहा है जिसमें होम विक्टोरिया द्वारा किराएदारों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के दावों को खारिज किया गया था। 2023 में इस्तीफा देने से कुछ दिन पहले विक्टोरियन लेबर प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज ने विक्टोरिया के सभी 44 सार्वजनिक आवास टावरों को ध्वस्त करने की योजना की घोषणा की। ऐसे वक्त में जब ऑस्ट्रेलिया एक निरंतर आवास संकट से जूझ रहा है, 10,000 विक्टोरियन लोगों के घरों को ध्वस्त करने और 2051 तक उन्हें फिर से बनाने की योजना ने कई विशेषज्ञों और निवासियों को असमंजस में डाल दिया है। अप्रैल में विक्टोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का विरोध करने वाले किराएदारों की एक सामूहिक कार्यवाही यानी क्लास एक्शन को खारिज कर दिया, पर अपना पक्ष पेश करने और अपनी कहानी सुनाने का संकल्प लिए वे निवासी अब एक अपील शुरू कर रहे हैं। लुइसा बेसिनी इनर मेलबर्न कम्युनिटी लीगल सेंटर में हाउसिंग और टेनेंसी की प्रबंध वकील हैं। उन्होंने SBS को बताया कि होम्स विक्टोरिया ने बिना परामर्श के निर्णय लेकर निवासियों के मानवाधिकारों पर उचित रूप से विचार नहीं किया।
The other grounds pertain to the group members' right to have an opportunity to be heard. To this day, Homes Victoria still haven't consulted with residents and allowed them to put forward submissions regarding alternatives to demolition. And so our argument is that the trial judge erred in finding that this wasn't required and that this wasn't necessarily impactful on the outcome of Homes Victoria's program.
विक्टोरियन हाउसिंग मंत्री हैरियट सिंह ने SBS को बताया कि टावरों के प्रतिस्थापन में पहले ही बहुत समय लग चुका है।
Well, anybody who's ever been in the towers or who calls the towers home will know that they're really noisy, they're cold in winter, they're hot in summer, they don't have access to the same sorts of ventilation, natural light or amenity that apply to every other form of housing around the state in terms of current codes of compliance.
नॉर्थ मेलबर्न पब्लिक हाउसिंग टावरों में निवासियों का कहना है कि उन्हें इस निर्णय के बारे में उनके दरवाजे के नीचे पड़े एक नोट के माध्यम से पता चला, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उनके घर सबसे पहले हटाए जाएंगे। गैब्रियल डे वियट्री विक्टोरियन ग्रीन्स हाउसिंग की प्रवक्ता हैं। वह रिचमंड की राज्य सदस्य भी हैं, जिसमें विक्टोरिया के किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक सार्वजनिक आवास टावर हैं। घोषणा के दिन निवासियों के लिए एक सार्वजनिक बैठक भी आयोजित की गई थी।
All they had heard was that they had received a letter under their door on the day that Dan Andrews made this announcement saying, "We're going to demolish your home. We don't know when. Sit tight." And the distress in that room was absolutely palpable because there had been no other information communicated. There'd been no consultation with residents whatsoever.
डेवियट्री का कहना है कि इनमें से कई टावरों में प्रमुख रूप से प्रवासी और रेफ्यूजी रहते हैं। उनका कहना है कि इन टावरों के अंदर दशकों से अपने एक समुदाय का निर्माण करने के बाद निवासियों को अपने समर्थन नेटवर्क से कट जाने का डर है।
One elderly Vietnamese woman stood up and spoke on behalf of this a group of residents that were all around an interpreter saying we will chain ourselves to this building rather than let the bulldozers come in. This is our home. We are not letting it go. And they have built their community around this location. They have access to their doctors, they have their friends, they have their services, and they have their community there.
Victorian Housing Peaks Alliance की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य को फिर से पटरी पर लाने के लिए विक्टोरिया को अगले दशक में 80,000 अतिरिक्त सोशल हाउसिंग घरों की आवश्यकता है। सोशल हाउसिंग यानी सामाजिक आवास में दो व्यापक श्रेणियां हैं, सार्वजनिक और सामुदायिक आवास। सार्वजनिक आवास यानी पब्लिक हाउसिंग का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि सामुदायिक आवास यानी कम्युनिटी हाउसिंग का प्रबंधन और अक्सर स्वामित्व भी निजी गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिट संगठनों द्वारा किया जाता है। हैरियट सिंह का कहना है कि इसके बावजूद किराएदारों के पास समान अधिकार हैं।
Everybody in social housing, whether they are provided housing under the public housing system or under community housing, who's coming off the wait list, who gets that housing as a result of that wait list and priority access, is entitled to the rights that exist under the Residential Tenancies Act. They are the same, irrespective of what part of the social housing system you are in.
लेकिन हालांकि किराएदारों के पास सामुदायिक आवास में रहने के बाद समान अधिकार हो सकते हैं, पर जिन निजी संगठनों के पास इन आवासों का स्वामित्व होता है, वे 25% तक घर रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट में से लोगों को किराए पर दे सकते हैं, जिसके कारण प्राथमिकता प्रतीक्षा सूची यानी प्रायोरिटी वेट लिस्ट में शामिल लोगों के लिए घरों की उपलब्ध संख्या कम हो जाती है। सरकार की नीति यह है कि सामुदायिक आवास संगठनों के स्वामित्व या प्रबंधन वाले सोशल हाउसिंग में सभी खाली घरों में से 75% घर प्रायोरिटी एक्सेस वाले आवेदकों को दिए जाने चाहिए। सार्वजनिक आवास यानी पब्लिक हाउसिंग आवेदकों को जरूरत के आधार पर दिया जाता है, जिसमें घरेलू हिंसा, बेघर होने और विकलांगता से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि सामुदायिक आवास यानी कम्युनिटी हाउसिंग सामाजिक आवास के लिए रुचि के रजिस्टर यानी रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट पर मौजूद लोगों का मिश्रण है, फिर चाहे वे खराब जीवन स्थिति में हों या ना हों। सामुदायिक आवास में किराए की कीमतें भी सार्वजनिक आवास के समान किराया सीमा के अधीन नहीं है, यानी किराएदारों को सामुदायिक आवास में जाने पर किराए में संभवतः 5% वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। लुइसा बेसिनी का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है।
This is returning to the estate subject to availability of community housing properties, which means that these people would no longer be public housing residents. They would be, living under the management of non-government organisations and with fewer rights that stem from the policies of those organisations. It's inadequate given that, they're being evicted, their homes are being demolished, and still there's no assurances that they can return as public housing residents to the estate.
हालांकि इस बात पर आम सहमति है कि टावर अब बिल्डिंग कोड मानकों के अनुरूप नहीं है, स्वतंत्र आर्किटेक्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इमारतों की मुरम्मत नहीं की जा सकती। नाइजल बर्ट्राम ने रेट्रोफिटिंग यानी मुरम्मत के लिए मामला बनाने वाली एक रिपोर्ट का सहलेखन किया और मोनैश यूनिवर्सिटी में वास्तुकला के प्रैक्टिस प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि टावरों को ध्वस्त करने की योजना में बहुत सी खामियां हैं।
They're all built in a very similar manner, so their modularity, if you like, makes them very suited to retrofitting, actually, because they're systematic. So if we could work out a system for one building, it can be used on multiple buildings. They're almost like a kit of parts out of the precast factory. We're put together in the same kind of way.
हालांकि पिछले कई दशकों में इन इमारतों में कई अनूठे परिवर्तन और संशोधन हुए हैं, उनका कहना है कि इससे निपटा जा सकता है।
It's possible to bring buildings up to standard to different degrees, certainly to the point that they're fit for habitation and fit for ongoing use into the future. If you think about the city as a whole, we have a whole lot of buildings, very cherished buildings from the 19th century. They don't meet current standards either, but we don't use that as a reason to knock them down. In fact, we think very carefully about how to make them livable for contemporary needs and retain them.
उनका कहना है कि स्वतंत्र विश्लेषण ने पाया है कि रेट्रोफिटिंग निवासियों पर सामाजिक प्रभावों के अलावा न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है।
We put all those social factors aside. We didn't cost them. We didn't discuss them. We just looked at the numbers of what would it cost, what's required scope of works, and what's its embodied carbon, and found that environmentally and economically, it's cheaper and better to retrofit rather than rebuild.
आर्किटेक्ट्स और शिक्षाविदों द्वारा रेट्रोफिटिंग के मामले पर तर्क देते हुए इस जैसी कई और रिपोर्ट्स जारी की गई हैं। लेकिन हैरियट सिंह का कहना है कि ये रिपोर्ट्स इमारतों की स्थिति और संरचना के बारे में गलत जानकारी देती हैं।
Firstly, what I would say is that the sort of buildings referred to by that person constructed in the 19th century were not 26 stories tall. So the sort of engineering challenges that exist there in the first place are
very difficult to compare with one and two storey buildings or smaller apartment blocks, walk-ups, for example, of three or four or five storeys. The second thing that's really important to note about this is that communities have expressed a very, very clear desire not to be impacted by construction.
Gabrielle De Vietri ka kehna hai ki unki team ne Richmond Nirvachan Kshetra ke sarvajanik awasun mein rehne wale har vyakti ka darwaza khatkhataya hai.
Across all the estates, what we're hearing from residents is that relocation officers they're promising things that they can't deliver, and they're threatening them with some pretty scary situations. So they're promising residents the right of return, which in fact Homes Victoria's own relocation policy doesn't actually guarantee the right of return, and residents aren't aware that what even if they do return maybe 7, 8, 9 years down the track, they're not actually going to be returning to public housing.
Sarkar ka kehna hai ki nivasiyon ke paas vapsi ka adhikar hai, lekin keval tabhi agar unhe iske liye yogya paya jata hai. इसलिए अगर अब किसी की स्थिति कुछ आवास विकल्पों के लिए उनकी पात्रता को बदल देती है तो उन्हें उनके पास अभी मौजूद आवास के लिए प्राथमिकता नहीं मिल सकेगी। जहां एक ओर सरकार इस बात पर जोर देती है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान निवासियों के साथ स्पष्ट संचार किया गया है, किराएदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने SPS को कुछ अलग ही कहानी बताई है। लुइसा बेसिनी का कहना है कि होम्स विक्टोरिया के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई में अब तक 800 से ज्यादा परिवार शामिल हैं।
They are residents of the three towers that are the first occupied towers that are set to be demolished. But we think that the outcome of this decision has ramifications for residents of all of the towers across Melbourne. So those 10,000 people, I think, all are watching closely and have an interest in this process being a fair one, because their towers are also set to be demolished under the program.
Caitlin Butters, Victoria ke Public Tenants Association VPTA ki CEO hain. Unhone SBS ko bataya ki kai sthanantaranon ki prakriya pehle se hi shuru ho chuki hai aur ab tak mile jule parinam samne aaye hain.
We have heard from some renters that they're quite happy in these homes, and from others that they just don't suit their needs at all, that the layouts aren't culturally sensitive for them, and that they are struggling to fit their furniture in the homes.
सरकारी सेवाओं पर productivity commission की ताजा वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विक्टोरियन परिवारों में से केवल 2.9% सामाजिक आवास में है, जो राष्ट्रीय औसत 3.9% से काफी कम है। केटलिन बटर्स का कहना है कि VPTA की मुख्य चिंताओं में से एक यह है कि जब इन सामाजिक आवासों का पुनर्निर्माण किया जाएगा तो उनमें से कई इमारतें वर्तमान में इन टावरों में रहने वाले परिवारों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगी।
There are lots of larger families at North Melbourne and Flemington that we did a detailed piece of community engagement work with to really understand what their ambitions were for new home to be rebuilt on the sites. And they had lots of very sensible and reasonable suggestions of things that they would like to see. And that included bedrooms that were large enough to have two single beds side by side, study areas for older children available, if not in the apartment itself, then a common area that they could go and do homework quietly. And very importantly, kitchens that are not open plan, but are separated from the rest of the home. So in many cases, for cultural reasons, but also to prevent the breadth of cooking smells and to create an extra living space for larger families.
Harriet Singh ka kehna hai ki sarkar apni yojanaon ke saath aage badhne ke liye dridh hai aur pratigya karti hai ki samudayon ke saath sanchar aur paramarsh har kadam par jari rahega.
We will keep working with residents and with the community to provide them with accurate information. We will keep working to make sure that people have access to housing that meets their needs. And we will keep working to make sure also that as the city grows and we head to a city the size of London by the 2050s, we're providing a range of housing options for private renters, for people in social housing, for people looking to buy their own home, and for people wanting to stay closer to where they grew up.
लेकिन Gabrielle De Vietri का कहना है कि Greens तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि यह योजना रद्द नहीं हो जाती.
So we're reaching out in as many ways as we can to try and stop this disastrous plan from happening, because nobody agrees with the government's plan. Nobody agrees with their decision to demolish these towers, and nobody thinks it's a good idea. In fact, across the political spectrum and across experts and service organisations, residents and community, everybody agrees that it is a disastrous idea, because any plan that starts with demolishing 7,000 homes in a housing crisis is not a housing plan. It's a housing disaster.
सिडनी लैंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया स्वाति शर्मा ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।